हेलो
हेलो हेलो,
वॉइस ऑफ अमेरिका, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी मैंने बात करनी है जी, गाने की फरमाइश करनी है जी।
हेलो, आवाज आ रही है?
हेलो चैट बस्टर्स, एक गीत की फरमाइश है।
अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप सुन रहे हैं चार्ट बस्टर्स। मैं हूं सादिया आसद और मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं अंजुम हैरल्ड गिल। आज का शो बहुत खास है क्योंकि आप ही की फरमाइश पर हमने इसे डेडिकेट किया है कुछ बहुत ही खास फनकारों को। तो आगाज करते हैं उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के इस खूबसूरत कलाम से।
चंबे दी बूटी मुर्शद मन विच लाजी मन विच लाई नफी असबात दा पानी मिलिया हर रगरे हर जा
वेलकम बैक, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सुन रहे हैं चार्ट बस्टर्स। मैं हूं सादिया आसद और मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं अंजुम हैरल्ड गिल। और कवालियां सुनाने के लिए तो 5 घंटे का शो होना जरूरी है क्योंकि हम आपको 1 घंटे के शो में एक पूरी कवाली भी नहीं सुना सकते। तो आपको बताते चलें कि 16 अगस्त को उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की बरसी थी, तो हमारे कुछ लिसनर्स ने फरमाइश की थी कि हमें उनके कुछ कवालियां और कुछ गीत सुनवाएं। तो उसी हवाले से आपने उनका ये कलाम सुना, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी मौजूद हैं, विहाड़ी से अल्लादिता शाकिर।
वालेकुम अस्सलाम मैडम जी, तमाम टीम को सलाम कहते हैं। और अभी आपने नुसरत फतेह अली खान की आवाज में सुनाया, तो उनकी 1948 से 1997 तक उनकी जिंदगी का सफर, जिनमें उन्होंने 125 कवालियां रिकॉर्ड करवाई और सारी हिट हुई। तो बहुत बड़े फनकार के आज उन कवाली से आपने प्रोग्राम का आगाज किया। तो बाकी वक्त मेरे पास कुछ लिसनर बैठे हैं, इमरान संगा, हाजी मोहम्मद संगा, वो भी सुन रहे हैं और आपको सलाम कह रहे हैं।
बहुत शुक्रिया, वालेकुम सलाम।
अभी हजरत सुल्तान बाहू का कलाम सुन रहे थे, तो वहाँ पे फैज अहमद खान फैज और फरूख खान, वहाँ एक शिकारियों की महफल लगी हुई है, वो भी आपका शो सुन रहे हैं।
मीरने वाला जंग से, जी जी
सलाम। तो बहुत शुक्रिया आपका,
थैंक यू सो मच
अली खान
जी, बहुत शुक्रिया
प्रोग्राम।
और हमारे अगले कॉलर हैं मोहम्मद आजम खुशाब से। जी डॉक्टर साहब
अस्सलाम वालेकुम भाजी।
वालेकुम अस्सलाम।
सबसे पहले तो मैं तमाम इस्लामी भाइयों को दिल के साथ मुबारक पेश करता हूँ।
थैंक यू।
और आपकी टीम को भी सलाम। और प्रोग्राम का बात इसी तरह मुझे इंतजार होता है जिस तरह ईद का इंतजार होता है, मैं बड़े शौक से प्रोग्राम सुनता हूँ।
तो आज तो फिर दो ईदें हो गई, आज तो तीसरा दिन है ईद का पाकिस्तान में, और फिर चार्ट बस्टर्स भी हो गया, तो दो ईदें आपकी एक दिन में ही हो गई।
जी वेरी गुड ईद हो गई।
थैंक यू।
साथ हैं मलिक रमजान साहब, अंकल गुलाम अहमद शेर बारसोटा, और सलाम देना चाहता हूँ शेर मुमताज अंजम साहब को, गुलाम अब्बास साहब को, नासिर भाई, डॉक्टर जफर इकबाल लड़का और खालिद भंडा जी,
बहुत शुक्रिया
वालों को, डॉक्टर आलम का सलाम।
थैंक यू सो मच। और चूंकि हम नुसरत फतेह अली खान साहब की बरसी के हवाले से ये प्रोग्राम हमने कुछ हिस्सा उनको डेडिकेट किया, तो आपको बताते चलें कि उनका शुमार आज तक रिकॉर्ड की गई बेहतरीन आवाज़ों में होता है। और जैसे कि वो जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने सैकड़ों कवालियाँ गाईं, तो उनके ख़ानदान में ये कई अशरों पर मुहित सिलसिला था, जिसको ना सिर्फ उन्होंने आगे बढ़ाया बल्कि कवाली के फ़न को आलमी सतह पर मुतारफ़ करवाने का सहरा भी नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के सर ही जाता है। तो चलिए सुनते हैं उनकी आवाज़ में एक और बहुत खूबसूरत कलाम।
तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राह हो मेरा
फेसबुक के कुछ मैसेजेस भी हैं हमारे पास जो हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ये हैं जी इम्तियाज़ पसवाल इंडियन कश्मीर से, लिखते हैं मैं रेगुलर लिसनर हूँ और मैं बहुत ही बचपन से आपका प्रोग्राम सुना करता था, यानी चार्ट बस्टर्स तो नहीं यानी वॉइस ऑफ अमेरिका के प्रोग्राम वो हमेशा से सुना करते थे। लिखते हैं कि फर्स्ट टाइम मैं मैसेज कर रहा हूँ, तो बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ पसवाल और आपका वेलकम करते हैं अपने शो में। परवीन ग्रोवर जी ने हमें पहली दफ़ा मैसेज भेजा है, वैसे तो ये हमें अपने हस्बैंड अशोक ग्रोवर जी के फेसबुक पे या उनके मैसेजेस के साथ अपना सलाम भी ऐड कर दिया करती थी, लेकिन आज इन्होंने पहली दफ़ा हमें मैसेज भेजा है। लिखती हैं कि ये पिछले जुमे के प्रोग्राम की बात कर रही हैं कि वारिस बेग के साथ बातचीत जो है गुफ्तगू अच्छी लगी, उनकी आवाज़ बड़ी प्लेजेंट है, बहुत ही अमेजिंग आवाज़ें थी, तो मैं परवीन ग्रोवर हूँ भटिंडा भारत से। बहुत शुक्रिया परवीन जी, आपको हमारा शो पसंद आया, थैंक यू सो मच। तौसीफ शो मैसेज भी लिखा है कि मेरी तरफ से सब ईद कबूल कीजिए, मैं बात करना चाहता हूँ। और मैसेज में लिखा है कि आज आपको लाइव देखा, यानी उन्होंने पिछले जुमे की बात कर रहे हैं क्योंकि हमने तब फेसबुक लाइव भी किया था 10-15 मिनट। तो लिखा है कि बहुत अच्छा लगा, क्या इसी जगह बैठकर आप प्रोग्राम पेश करती हैं जहां आप लाइव प्रोग्राम के दौरान बैठी थी? तो एग्जैक्टली यहीं बैठकर मैं प्रोग्राम करती हूं, यही कुर्सी, यही जगह, यही माइक, तो यहीं बैठकर पूरा प्रोग्राम करती हूं। तो अब आपके जहन में तस्वीर रहेगी, थैंक यू सो मच तौसीफ। फकीर गुलाम हैदर संजरानी है किसी खास जगह से, इन्होंने लिखा है, हाँ जी मीरपुर खास सिंध से, लिखते हैं हम किसान लोग हैं, सारा दिन खेतों में काम करते हैं, रात को आपकी मीठी मीठी आवाज में प्रोग्राम सुनते हैं, अच्छे अच्छे गीत सुनते हैं, सच पूछिए तो आपका प्रोग्राम सुनकर सारे दिन की थकन दूर हो जाती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फकीर गुलाम हैदर सिंजरानी साहब। मोहिद अहमद पूंछ कश्मीर से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से आपको और आपके सभी अहले खाना को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको और आपके तमाम अहले खाना को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, ईमान और सेहत अता फरमाए। थैंक यू सो मच मोहिद अहमद साहब, आपने हमें याद किया जी। और बात हम कर रहे थे नुसरत फतेह अली खान साहब की, जिन्होंने पहली दफ़ा अपने वालिद साहब के 40वें पर 16 बरस की उम्र में कलाम पढ़ा, और उसके बाद फिर इंग्लैंड, यूरोप, भारत, जापान, अमेरिका वगैरह के मकामी गुलकारों के साथ मिलकर कलेबरेशन में उन्होंने गाया और आलमी सतह पर भी उन्होंने खूब नाम कमाया। तो सुनते हैं उनकी आवाज़ में एक और खूबसूरत कलाम। वेलकम बैक वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं चार्ट बस्टर्स। मैं हूं सादिया असद और मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं अंजुम हैरल्ड गिल। आपको बताते चलें कि नुसरत फतेह अली खान साहब को कई एजाजात से नवाजा गया, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी उन्हें दिया गया और यूनेस्को म्यूजिक प्राइज भी उन्हें मिला और यूके एशियन म्यूजिक अवार्ड से भी नवाजा गया उन्हें। और सन 2008 में CNN की मोस्ट 20 आइकॉनिक आर्टिस्ट ऑफ 50 ईयर्स की लिस्ट में भी उन्हें जगह मिली और UGO की बेस्ट सिंगर ऑफ ऑल टाइम्स की लिस्ट में भी वो शामिल हुए और NPR की 50 अजीम आवाजों की लिस्ट में भी वो रहे। उन्हें अपने कैरियर के दौरान बहुत सारे अवार्ड मिले और उस्ताद के टाइटल से भी उन्हें नवाजा गया। और गूगल ने एक दफ़ा उनकी सालगिरह के मौके पर ना सिर्फ उनका डूडल बनाया बल्कि उन्होंने लिखा कि ये एक ऐसे शख्स है जिन्होंने दुनिया के लिए सूफी म्यूज़िक के दर खोले हैं। और चूंकि उनका वज़न काफ़ी बढ़ गया था तो कई तरह के सेहत के मसाइल रहते थे, तो अपने गुर्दों और जिगर के इलाज के लिए लंदन में थे, तो वहीं उन्हें एकदम अचानक दिल का दौरा पड़ा और 48 बरस की उम्र में वो वहीं लंदन के एक अस्पताल में चल बसे। वहां से फिर उन्हें वापस अपने आबाई शहर फैसलाबाद लाया गया, जहां पर कबूतरा वाला कब्रिस्तान है झंग रोड पर, वहां पर उन्हें दफनाया गया। और जैसा कि आप सब जानते हैं, उनके भतीजे कवाली की उनकी मीरास को आगे बढ़ा रहे हैं और जिनका नाम है राहत फ़तेह अली ख़ान, आप सब उनसे वाकिफ़ हैं। तो चलिए आपको एक और बहुत ही खूबसूरत कलाम सुनवाते हैं नुसरत फ़तेह अली ख़ान की आवाज़ में। आप हमें कॉल कीजिए 08007779 पर। अब आपके हाथ में, पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए, दूर जाने की जरूरत नहीं। वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। वीओए उर्दू अब आपके हाथ में। वेलकम बैक, वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम सुन रहे हैं आप चार्ट बस्टर्स। मैं हूं सादिया असद, मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं अंजुम हेरल्ड गिल और हमारे साथ कामरान हैं भक्कर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो
हेलो,
ये तो कामरान की आवाज़ नहीं है, कौन बात कर रही है?
हेलो,
हाँ जी बोलें।
जी मैं कामरान नगर बात कर रहा हूँ।
मुझे तो लड़कियों जैसी आवाज़ लगी। जी कामरान बोलिए।
जी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ।
कीजिए ना।
हेलो,
लगता है आप तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही। बहुत शुक्रिया कामरान, हम तो मुसलसल आपकी बात का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको शायद सुनाई नहीं दे रहा। हमारे साथ नज़ीर अहमद भिंडर हैं गुजरांवाला अरूप से। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम।
भिंडर साहब बड़े दिन बाद आपने कॉल की। जी बिल्कुल ठीक ठाक हैं आप, बताइए ईद कैसी गुजरी आपकी? आज तीसरा दिन है ईद का।
बहुत जबरदस्त।
अच्छा तो मुझे ये बताएं, ये जो कुर्बानी
प्रोग्राम बहुत अच्छा,
अच्छा पसंद आया आपको?
जी जी
बहुत शुक्रिया,
बहुत पसंद आया।
भिंडर साहब ये बताएं, आपने कुर्बानी की थी इस ईद पर?
जी जी پوچھنا دو قربانیاں کی ہیں، ایک بڑی اور ایک چھوٹی۔
پوچھنا مجھے یہ تھا کہ پھر اس کا جو میں دیکھ رہی تھی ٹی وی پر، تو مجھے کچھ اتنا مطلب پلیزنٹ نہیں لگ رہا تھا کہ ہمارے جتنے بھی شہر ہیں وہاں پر اتنی زیادہ آلائشیں ہیں، اتنی گندگی قربانی کے بعد۔ تو آپ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا جب ذبح کروائے اپنے جانور، تو پھر وہ جو اس میں سے باقیات تھیں اس کا کیا کیا آپ نے؟
اس کو ایک گڑھا کھود کے اس کے بیچ اوپر مٹی ڈال دی۔
کتنے سمجھدار ہیں آپ، بالکل یہی کرنا چاہیے۔ ہمارے اور بھی کچھ کالرز تھے جنہوں نے ہمیں یہی بتایا۔
بدبو ہے ہمارے شہروں میں، اتنی بدبو آ رہی ہے کہ میں آج گھر جا رہا تھا تو رستے میں وومٹنگ ہو گئی مجھے۔
بالکل، کیونکہ ہم ہر بات کے لیے کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے ان کی گاڑیاں نہیں آئیں، انہوں نے اٹھایا نہیں، تو ہماری بھی کچھ ذاتی سطح پہ ذمہ داری بنتی ہے جس کو ہمیں نبھانا چاہیے۔ جیسے کہ بھنڈر صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک گڑھا کھودا اور اس میں دبا دیا، اور ہمارے ایک اور کالرز بھی تھے غلام حیدر سنجرانی، انہوں نے بھی مجھے یہی بتایا کہ ہم نے ان کو دبا دیا تھا۔ تو بہت شکریہ، بتائیے کیا سننا چاہتے ہیں آپ؟
میری فرمائش آپ نے نہیں پڑھی۔
میں آج آپ کی مجھے آپ کا میسج نظر نہیں آیا فیس بک پر، شاید میری غلطی ہے، نہیں پڑھ رہا۔ جی جی، تو ٹھیک ہے، میں نوٹ کر لوں گی۔ میں اپنی پسند کا آپ کو گیت سناتی ہوں۔ تھینک یو سو مچ، بہت
شکریہ۔
کیا بات ہے، آپ نے ہم دونوں کو ایک ساتھ خوش کر دیا، بہت شکریہ بھنڈر صاحب، تھینک یو سو مچ۔ تو اب ہم جس دوسری آرٹسٹ کو شامل کر رہے ہیں اپنے پروگرام کا کچھ حصہ، جن کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں، وہ ہیں منموہنی صورت کی حامل بہت ہی پیاری سی گلوکارہ، جو بہت ہی چھوٹی عمر میں ڈھیروں شہرت سمیٹ کر اس دنیا سے چلی گئی، نازیہ حسن، جن کی 13 اگست کو برسی تھی، اور ہمارے لسنرس نے ان کے گیت کی فرمائش بھی کی تھی، اور فاروق بھٹ نے کشمیر سے کہا تھا کہ دیدی کوئی پنجابی گیت سنوا دیجیے۔ تو نازیہ حسن کی آواز میں سنتے ہیں یہ گیت۔ فاروق بھٹ، معذرت، یہ پنجابی کا گیت نہیں ہے، پنجابی کا گیت بعد میں سنواؤں گی، یہ قربانی فلم کا وہ گیت ہے جس نے راتوں رات نازیہ حسن کو شہرت کی بلندیوں پہ پہنچا دیا۔ نواب شاہ سے، وہ اپنے تمام دوستوں کو سندھی ریڈیو لسنرز کلب کی طرف سے، وہ ہمارا شو بھی بہت باقاعدگی سے سنتے ہیں اور ہمیں میسج بھی بہت ہی باقاعدگی سے کرتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کا بے حد شکریہ کہ آپ نے عید کے میسیجز ہمیں بھیجے، اتنی دعائیں اور اتنی محبتوں کے پیغام ہمارے نام کیے، تھینک یو سو مچ۔ اس کے علاوہ فاروق بھٹ نے گوندی پورہ کشمیر سے ہمیں عید مبارک بھی کہی ہے، اور کوئی پنجابی گیت سننے کو کہا ہے، بالکل آپ کو سنوائیں گے۔ اور ڈار کبیر نے بھی جہاما ہریل لنگیٹ کشمیر سے، بڑا مشکل سا نام تھا، لکھتے ہیں کہ میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے سنتا ہوں، مجھے بہت پسند ہے، تھینک یو سو مچ ڈار کبیر صاحب۔ سلیم علی منہاس پونچھ کشمیر سے، انہوں نے بھی سلام لکھا ہے۔ تو یہ تھے ہمارے وہ تمام میسیجز جو ہمارے لسنرز نے ہمیں فیس بک پر کیے۔ اور چونکہ بات ہو رہی تھی نازیہ حسن کی تو وہ صرف پاپ گلوکارہ ہی نہیں گیتکار بھی تھیں, گیت لکھا کرتی تھیں, وکیل بھی تھیں اور سوشل ورکر بھی تھیں. اور 10 برس کی عمر میں انہوں نے گیت گایا, بلکہ وہ لندن میں چونکہ پلی بڑھی تو وہیں پر ایک پارٹی میں فیروز خان کی ان سے ملاقات ہوئی جو قربانی فلم کے ڈائریکٹر بھی تھے اور انہوں نے اس میں کام بھی کیا تھا. تو انہوں نے نازیہ کو کہا تھا گانے کے لیے, تو اس کے بعد ان کا یہ گیت بہت ہی معروف ہوا اور 15 برس کی عمر میں ان کو فلم فیئر ایوارڈ ملا. اب تک یہ ان کے پاس ہی ہے ریکارڈ کہ کم عمر ترین گلوکارہ ہیں یا آرٹسٹ ہیں جن کو یہ ایوارڈ آج تک ملا ہے. تو پاک و ہند کی معروف ترین گلوکاراؤں کی صف میں وہ شامل ہو گئی تھیں اور جنوب مشرقی ایشیا میں کوئن آف پاپ کہلائی تھیں. تو سنتے ہیں ان کا اب وہ گیت جو فاروق بھٹ نے کہا تھا کہ کوئی پنجابی گیت سنوا دیں, تو سنتے ہیں ان کا یہ پنجابی گیت. ویلکم بیک, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام سن رہے ہیں چارٹ بسٹرز. میں ہوں سعدیہ اسد اور پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ فیس بک کے میسیجز. فیض احمد خان بلوچ نے میرنے والا جھنگ سے لکھا ہے کہ سعدیہ صاحبہ آپ کو بہت عید مبارک اور سلام, اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کی پوری ٹیم کو ہماری طرف سے عید مبارک. آپ لوگوں نے عید پہ کیا کیا؟ تو ہم سب لوگ جو کہ آفس آئے تھے عید کے دن, हमने यहाँ पर बहुत अच्छा लंच किया और खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए थे, बहुत मजा आया, बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे अपनों में हम लोग ईद कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा गुजरा हमारा दिन। फैज अहमद खान बलोच, आपने मीरने वाला जंग से पूछा और ईद की मुबारकबाद दी, थैंक यू सो मच। और आपने एक मुझे अपनी आवाज में एक कलाम रिकॉर्ड करके भेजा था, माजरत चाहती हूँ इस दफा मैं शामिल नहीं कर सकी, नेक्स्ट टाइम करूंगी, ठीक है। और स्लीम अली मिनहास ने, हालांकि आपने पहले भी लिखा था लेकिन आपने एक और मैसेज मुझे भेज दिया है और जिसमें आपने भी पूरी टीम को ईद मुबारक कहा है, एक गीत सुनने की फरमाइश की है और ये फरमाइश तो अब अगली दफा ही पूरी होगी। स्लीम अली मिनहास, बहुत शुक्रिया। अमजद नदीम घल्लू हैं, आप सबको पता ही है, भक्कर से लिखते हैं, सादिया बाजी गुज़श्ता ईद मुबारक और अशोक ग्रोवर जी को सालगिरह की मुबारकबाद। बिल्कुल, अब नेक्स्ट मैं भी यही कहने लगी थी कि हमारे बहुत ही रेगुलर लिसनर भटिंडा भारत से अशोक ग्रोवर जी, जो बहुत ही, बल्कि उन्होंने अभी खुद भी मैसेज किया है, उन्होंने बड़ी धूमधाम से अपनी सालगिरह मनाई है अपनी फैमिली के साथ, तो हमारी तरफ से भी, हमारी पूरी टीम की तरफ से भी आपको सालगिरह की मुबारकबाद हो। और अमजद नदीम घल्लू की तरफ से भी, आपने लता जी का एक गीत सुनना चाहा है, बड़ा खूबसूरत गीत है, नेक्स्ट टाइम जरूर प्ले करूंगी। और अरशद नदीम घल्लू ने भी भक्कर ही से हमें मैसेज किया है, वो भी हमारे पिछले प्रोग्राम को बहुत पसंद कर रहे हैं और खुश हुए कि हमने पिछली दफा उनकी फरमाइश पर गीत प्ले किया। फिर एक फरमाइश हमें भेजी है और लिखते हैं कि मुसरत शाहीन भी दिल की गहराइयों से आपको ईद कह रही हैं, पूरी टीम को थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का जो हमें इतनी मोहब्बत से लिखते हैं। और देखिए अमजद नदीम घल्लू साहब, आपने जैसे ही विश की अशोक ग्रोवर जी को, उनका मैसेज आया है फौरन फेसबुक के चार्टबस्टर्स के पेज पर और वो आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी मौजूद हैं, हम देखते हैं कि जी अंजुम कौन है इस वक्त हमारे साथ। हेलो, मोहम्मद अली राजनपुर से, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम
जी, बोलिए।
जी हाँ, सब सुनने वालों को मेरी तरफ से, मोहम्मद अली गुरचानी बलोच की तरफ से, सब सुनने वालों को ईद मुबारक, जहाँ जहाँ तक मेरी हाल जा रही है।
जी, बहुत शुक्रिया।
तो, अच्छा प्रोग्राम है और जबरदस्त लगता है, बहुत शौक से सुनते हैं। दो तीन छुट्टियां की, यानी दो तीन जुम्मे तक हमने कॉल नहीं किया।
क्यों?
और शायद मैं घर नहीं था।
अच्छा, शायद, यानी यकीन आपको बिल्कुल भी नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन अब आप हमें कॉल करते रहिए, नंबर जरा नोट कर लें, हम हर दफा बताते भी हैं। तो बताएं, ईद कैसी गुजरी आपकी?
शुक्र गुजार हूँ, उन्होंने मुझे खुद कॉल किया हुआ है।
क्या बात है, मिलाता रहा। बस दफा ये होता है कि जब मोबाइल होता है तो फिर, और थोड़ी सी देर हो जाए तो हम नहीं चाहते कि आपके इतने ज्यादा पैसे लगे। थैंक यू सो मच। और तारिक चुगताई हैं, जिनको, तारिक चुगताई साहब मैं बहुत दिनों से मिस कर रही थी कि आपने कॉल करना छोड़ दी है, जरा बताइए आप कहाँ थे, शायद घर पे नहीं थे आप भी?
नहीं सादिया बहन, ऐसा नहीं है, कोशिश करता रहा, नंबर बिजी होता है, हो जाता है बार दफा।
अच्छा ठीक है,
तो ऐसा नहीं है,
कसूर तो हमारा ही निकल आया फिर
है। जो डॉक्टर है ना जी,
जी जी,
आपको मैं ये बता दूं कि आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं।
बहुत शुक्रिया।
जब तक चार्ट डॉक्टर ना सुना जाए तो वो नहीं आता चैन दिल को। तो मैं बीओ की पूरी टीम को, तमाम प्रोड्यूसर हजरात को और मेरे वो तमाम लिसनर जो कॉल नहीं करते उनको, और स्पेशल पर्सन जितने भी स्पेशल ब्लाइंड सोवर जो भी, उन सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक।
बहुत शुक्रिया।
और नुसरत फतेह अली खान साहब और नाजिया हसन, इनमें मसलत ये एक है, ये दोनों बिछड़े बहुत छोटी उम्र में, बिछड़े
बहुत जल्दी चले गए जी।
हालांकि
और एक और मसलत भी है,
लेकिन
के दोनों ने बहुत ज्यादा शोहरत मिली, दोनों को बहुत ज्यादा शोहरत मिली
और बड़ी छोटी उम्र में शोहरत मिली। और नुसरत फतेह अली खान साहब तशरीफ लाए थे इधर कसूर बुलेशाह सरकार से
जी।
और मैंने जब मिले उनको तो जितने बड़े फनकार थे उतने ही बड़े इंसान भी थे
जी जी।
और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपकी सिलेक्शन ऐसी होती है, तो वो बहुत दिलचस्प है। ये आज ईद का, मेरा तो ईद आज दवाला हुआ, मेरी कॉल मिल गई, अंजुम भाई ने पिक कर लिया,
बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
मेरी तरफ से अल्लाह ताला आपको अपने सम्मान में रखे, बहुत शुक्रिया,
बहुत शुक्रिया। और हमारे नेक्स्ट कॉलर हैं जाहिद साहब जी, अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब जी, जाहिद हुसैन भुट्टो साहब, हेलो, उन्हें शायद हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब, आवाज आ रही है? हेलो, अब देखिए ना, आपकी किस्मत, हमने तो बहुत कोशिश की कि आपकी हमसे बात हो जाए, और जैसे भी तारिक चौगताई साहब ने कहा कि ऐसे बहुत से लिसनर्स हैं जो सिर्फ हमारे प्रोग्राम सुनते हैं लेकिन कॉल नहीं करते. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हम सब जो है वो कभी ना कभी कोई ना कोई रेडियो या टीवी का शो बहुत शौक से सुनते हैं, लेकिन कभी कलम उठा के खत नहीं लिखा, कभी फ़ोन उठा के कॉल नहीं की. हमारे वो तमाम लिसनर्स जो प्रोग्राम सुनते हैं, पसंद करते हैं और फिर हमारे लिए वक्त निकालते हैं और बार बार हमारा नंबर डायल करते हैं, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं हम उनके. लेकिन मैं अपने उन कॉलर से भी कहूँगी जो प्रोग्राम तो सुनते हैं लेकिन ना मैसेज करते हैं हमें, ना खत लिखते हैं और ना ही हमें किसी तरह का कॉल करते हैं. तो कॉल का नंबर बताई देती हूँ, 0800-77789. तो प्लीज़ आप अपना फ़ोन उठाइए, आपके लैंडलाइन नंबर से हमारी कॉल बिल्कुल फ्री होती है. तो आप कोशिश कीजिए, नंबर ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि लाइन एक होती है और काफ़ी ज़्यादा कॉल्स आ रही होती हैं और बाज़ दफ़ा वो होल्ड पे होती हैं. तो आपको लगता है कि आप नंबर मिला रहे हैं, बेल जा रही है, कोई उठा नहीं रहा, ऐसा नहीं होता. ऑलरेडी उस नंबर पर कोई कॉल मौजूद होती है, तो आप प्लीज़ कॉल कीजिए. हाफिज़ फयाज अहमद लियाकतपुर से हमारे साथ हैं. अस्सलाम वालेकुम. हेलो.
वालेकुम अस्सलाम.
कैसे हैं आप?
बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह.
हाँ जी, बताइए कैसी गुजरी है आपकी ईद हाफिज साहब?
मैं तो आपसे बहुत नाराज हूँ.
ओहो, क्या हो गया? अब ईद के दिन तो नाराज नहीं हो ना आप?
आज ये मेरी आखिरी कॉल है.
क्यों भाई, क्या किया हमने?
15 मिनट से कॉलें लगा रहा हूँ, 450 रुपया खर्च हो गया.
ओहो, देखिए ना, ये तो हम बार बार अनाउंस करते हैं कि मोबाइल से पैसे कटेंगे और नंबर, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कोई होल्ड पे होता है पहले से.
बेलें, कभी 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 बेल भी आ जाती है. तीन बार कोशिश की, बेल भी डालती है मगर उठाते नहीं है.
नहीं, वो तो वही कि लाइन एक है ना, अगर ऑलरेडी उस पर कोई लाइन पे होल्ड पे है कोई कॉलर, आपको लगेगा तो ये कि नंबर बेल जा रही है, कोई उठा नहीं रहा, लेकिन वो हमें उस वक्त नहीं मिल रही होती. तो मैं माजरा चाहती हूँ कि आपके इतने पैसे कटे, और हम पहले से ही बता देते हैं डिस्क्लेमर कि आपके मोबाइल से पैसे लगेंगे, आप लैंडलाइन से आपको ये कॉल की सहूलत फ्री है. और हम अपने लिसनर्स को बता दें कि वॉइस ऑफ अमेरिका ने एक ऐप इंट्रोड्यूस करवाई है जो आईफोन पे दस्तियाब है, आप खसूसी तौर पर तैयार की गई है, आप इसे डाउनलोड कीजिए और ऐप स्टोर पर भी ये दस्तियाब है. और उसके बाद आप हमारी ताज़ा तरीन खबरें, हमारी लाइव स्ट्रीमिंग, ब्रेकिंग न्यूज़ सब देख सकेंगे उस पर. तो प्लीज़ ऐप स्टोर पर जाइए और VOA उर्दू की ये ऐप डाउनलोड कीजिए. और नाज़िया हसन का एक और बहुत ही खूबसूरत गीत आपको सुनवाते हैं, तो सुनिए उनकी आवाज में ये खूबसूरत गीत. वेलकम बैक वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं चार्ट बस्टर्स और मैं हूँ सादिया असद और मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं अंजुम हैरल्ड गिल। जिक्र जहलम का है, बात है दीने की, चांद पुखराज का, रात पश्मीने की। क्या बात है, जहलम और दीने के साथ जिस शायर और गीतकार का नाम जुड़ा है वो है गुलजार। एक बहुत ही मारूफ शायर, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और मुसन्निफ गुलजार, जिनकी शायरी में इंतहाई खूबसूरत इस्तियारे और तशबीहात आपको मिलती हैं। और इसकी सबसे दिलकश मिसाल उनका ये गीत है।
मंदिर में हो एक जलता दिया,
आंख में नमी सी है, शाम से आंख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। 18 अगस्त को गुलजार की सालगिरह के मौके पर हमने सोचा कि हम आपको भी उनके बहुत खूबसूरत गीतों से महसूस करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि वो शायर होने के साथ साथ फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर, प्रोड्यूसर और मुसन्निफ भी थे। उन्होंने फिल्म आंधी और मौसम के अलावा भी कई फिल्में डायरेक्ट की और टीवी सीरीज मिर्जा गालिब भी डायरेक्ट की। आइए सुनते हैं फिल्म आंधी का ये खूबसूरत गीत।
तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं।
वेलकम बैक वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं चार्ट बस्टर्स और मैं हूँ सादिया असद। मेरे साथ प्रोड्यूसर है अंजुम हेरल्ड गिल। अमन की आशा की मुहिम जो भारत और पाकिस्तान के लीडिंग मीडिया ने शुरू की थी उसका तराना भी गुलजार ने लिखा था। आपको बताते चलें कि वो कभी भी अपनी जन्मभूमि या जाए पैदाइश को नहीं भूले। उनकी शायरी में वो तड़प, वो कशिश और पुराने दोस्तों की जुदाई हमें जा बजा नजर आती है। उनकी एक बड़ी खूबसूरत नज्म है पड़ोसी। जब तक मेरे सामने वाले घर में रोशनी जलती है, मेरे कमरे की दीवार पे उस घर की परछाइयां चलती रहती हैं। एक व्हील चेयर है, धक्का खा के दाएं बाएं घूमती रहती है। उस घर की दो पालतू चिड़ियां उड़ती हैं तो मेरी इस दीवार से टकरा जाती हैं। उस घर में लटका एक पिंजरा मेरे घर का पिंजरा लगता है। जाने कौन सी खिड़की बंद होती है जिसकी जाली से दीवार पे जेल का दरवाजा बन जाता है। आते जाते लोग सभी कैदी लगते हैं। नंगा लटका बल्ब कभी हिल जाए तो लोग हवा में उड़ने लगते हैं। एक सर्कस लग जाती है। कुछ देर गदर मच जाता है, फिर वो खिड़की खुल जाती है और कोई बत्ती जलती है। वो झूमते साए लिपटे लिपटे बैल्कनी में आके खड़े हो जाते हैं। शायद मेरे घर की जानिब देख रहे हैं। कभी कभी यूं भी होता है, उस घर के धुएं की परछाई मेरी दीवार पे पड़ती है, तब लगता है दोनों घरों में आग लगी है। गुलजार की अपनी ही आवाज में उनकी एक बहुत छोटी सी और बहुत खूबसूरत नज्म आपको सुनवाते हैं।
मुझको भी तरकीब सिखा कोई यार जुलाए, अक्सर तुझको देखा है कि ताना बुनते, जब कोई तागा टूट गया या खत्म हुआ फिर से बांध के और सिरा कोई जोड़ के उसमें आगे बुनने लगते हो। तेरे इस ताने में लेकिन एक भी गांठ गिरह बुंदर की देख नहीं सकता है कोई। मैंने तो एक बार बुना था एक ही रिश्ता, लेकिन उसकी सारी गिरहें साफ नजर आती हैं मेरे यार जुलाए। मुझको भी तरकीब सिखा कोई यार जुलाए।
वेलकम बैक वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं चार्ट बस्टर्स। मैं हूँ सादिया असद, मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं अंजुम हेरल्ड गिल। हम अपने लिसनर्स को बताते चलें कि वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस देखने के लिए आईफोन पर एक ऐप तैयार की गई है। जी हाँ, जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। आप इसे डाउनलोड कीजिए और हर वक्त ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहिए। हम बात कर रहे थे गुलजार की। उन्होंने कई किताबें लिखी जिनमें रात पश्मीने की, चांद पुखराज का, दो लोग, रावी पार, हाफ अरबी, सस्पेक्टेड पोइम्स और सिलेक्टेड पोइम्स के नाम काफ़ी नुमाया है। और तकसीम पर भी, बल्कि धागे भी उनकी बड़ी अच्छी नज़मों की किताब है। तकसीम पर भी उनकी किताब फुट प्रिंट्स ऑन जीरो लाइन है। और इसके अलावा भी मुतादिद किताबें उन्होंने लिखी हैं।
पत्थर की हवेली को शीशे के घरों दो में तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं।
वेलकम बैक वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से आप प्रोग्राम सुन रहे थे चार्ट बस्टर्स। तो आइए आपको उनकी आवाज में उनकी एक और नज्म सुनवाते हैं।
मैं रोजगार के सिलसिले में
कभी कभी उसके शहर जाता हूं तो गुजरता हूं उस गली से, वो नीम तारीख सी गली और उसी के नुक्कड़ पे ऊंगता सा पुराना खंभा, उसी के नीचे तमाम शब इंतजार करके मैं छोड़ आया था शहर उसका। बहुत ही खस्ता सी रोशनी की छड़ी को टेके वो खंभा भी वहीं खड़ा है। फुतूर है ये, मगर मैं खंभे के पास जाकर नजर बचा के मोहल्ले वालों की पूछ लेता हूं आज भी ये वो मेरे जाने के बाद भी आई तो नहीं थी, वो आई थी क्या।
इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। मेरे साथ प्रोड्यूसर थे अंजुम हैरल गिल। सादिया सद को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले गुलजार का लिखा हुआ एक और बहुत खूबसूरत गीत।
चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया सारे इश्क की छाँव चल छैया पाओ जन्नत चले चल छैया छैया पाओ जन्नत चले चल छैया चल छैया 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 वो यार है जो खुशबू की तरह जिसकी जुबान उर्दू की तरह मेरी शाम रात मेरी कायनात वो यार मेरा सैया सैया चल छैया 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 चल छैया 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 छैया
अमरीका की दरखास्त पर लंदन में कराची के एक सरमायाकार जाबिर मोतीवाला को नशा आवर अद्वियात की स्मगलिंग और काले धन को सफेद करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। वाजे रहे कि बरतानिया की क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने जाबिर का दाऊद इब्राहिम के साथ ताल्लुक बताया। जाबिर के वकील ने इस इल्जाम से इनकार किया है। मोतीवाला के वकील टोबी कैडमन ने कहा कि जो इल्जाम पेश किया गया है वो महज इल्जाम है और इस सिलसिले में कोई ठोस शवाहिद नहीं पेश किए गए। उनका कहना था कि मोतीवाला एक ताजर खानदान से वाबस्ता हैं और उनके मफाद में हैं कि वो बरतानिया में रहकर अपने नाम का दिफा करें। कराची में ताजर बरादरी ने इस मामले पर कुछ कहने से गुरेज किया, लेकिन फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशंस के प्रोफेसर अजमत रसूल कहते हैं कि अब दहशतगर्दी के पीछे काले धन का खात्मा दुनिया की तरजीह बन गई है।
ये केस जो है ये बड़ा अहम इस हवाले से है कि इस वक्त दुनिया के अंदर एक इत्तफाक राय जो वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन है उसमें डेवलप हुआ है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग ना सिर्फ ये एक करप्शन का बायस बनती है जो कि तीसरी दुनिया के ममालिक का एक बहुत बड़ा मसला है जिसमें लोग पैसों को लॉन्डर करके दूसरे ममालिक में ले जाते हैं और नतीजतन वो ममालिक जो है मजीद पसमानगी की दलदल में फंसते जाते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि उसके साथ साथ ये टेररिज्म, क्राइम, ड्रग्स और इस तरह के दीगर तमाम मामलात के अंदर ये रकम इस्तेमाल होती है जो ना सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बल्कि दुनिया के दीगर तमाम ममालिक को मुतासर करती है। पाकिस्तान के लिए इसमें बड़ी इम्प्लीकेशन है। पाकिस्तान पहले एक ग्रे लिस्ट पे है, नंबर एक बात। नंबर दो बात यह है कि जो एक हमारी इलाकाई पाकिस्तान के अंदर जो एक इलाकाई सूरत हाल है उसके अंदर हिंदुस्तान, अमेरिका और बल्कि पाकिस्तान के जो हलीफ ममालिक हैं उनके दरमियान भी इस बात पे इत्तफाक राय कम अज कम मौजूद है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग की रकम है ये टेररिज्म के लिए और दीगर इस तरह की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल हरगिज नहीं होनी चाहिए, जो कि ना सिर्फ साउथ एशियन या मिडल ईस्टर्न रीजन बल्कि ये है कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के अंदर किसी भी गलत काम के लिए इस्तेमाल हो सके।
प्रोफेसर रसूल का कहना था कि इस मामले का एक सियासी पहलू भी है।
ये वो अंडरस्टैंडिंग है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया के दरमियान डेवलप हो गई है कि इस मामले के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो बेस्ड अकेले के अनासर हैं या ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको टारगेट किया जाए, लेकिन इसमें जो मसला है वो ये है कि ये इस तरह के चंद लोगों या चंद ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस के ऊपर इंडिया जो है वो पूरे पाकिस्तान या उसको पनिश करने की सियासत के अंदर इन्वॉल्व होता है, तो ये चीज जरा प्रॉब्लमेटिक है जो पाकिस्तान और यूएस के रिलेशनशिप को भी मुतासर करती है। सारे मामले के अंदर जो बात निकलती है वो ये है कि इस तरह के मामलात को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर या यूएस पाकिस्तान के रिलेशनशिप के ऊपर नियासरअंदाज नहीं होना चाहिए।
दूसरी तरफ लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन लॉर्ड नजीर अहमद का कहना था कि लंदन में चलने वाले इस केस में कानूनी कार्रवाई फकत लंदन तक महदूद रहेगी।
ये कुछ केसेस ऐसे हैं जहां इंटरनेशनल वारंट्स कुछ लोगों के खिलाफ होते हैं, जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग या सीरियस क्राइम अबडक्शंस वगैरह या ब्लैकमेल या क्राइम इंटरनेशनल क्राइम में जो लोग मुलव्वस हैं, लेकिन ये कोई अमेरिकन यहाँ से उठा के उस किसी को अमेरिका नहीं ले जा सकते, उनको उस शख्स को यहाँ पे कोर्ट्स में प्रोड्यूस करना बड़ा जरूरी है। तो हमने देखे एग्जाम्पल्स ने दो तीन केसेस आए हैं जहां पे अमेरिकन अथॉरिटीज ने एक्सट्राडाइट करने की कोशिश की, लेकिन उनके जो डिफेंस था वो ये था कि अगर हम हमें अमेरिका ले जाते हैं तो लंबी सजा या सजाए मौत हो सकती है, तो वो हम लोग अप्रूव नहीं करते। तो इस केस में मेरे ख्याल में अगर यहाँ के वकला जो लंदन में मौजूद हैं वो कोर्ट्स में जाके डिफेंस प्रोड्यूस करें, बल्कि अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान भी ऑब्जेक्ट करे कि ये हमारा सिटीजन है, बरतानिया से आप उसको उठाने के बजाय आप कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एविडेंस प्रोड्यूस करें जो उसके खिलाफ है, तो हम उसको अरेस्ट करके आपके हवाले कर सकते।
ये थे लंदन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन लॉर्ड नजीर। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ नफीसा हूद भाई।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में। पढ़िए, देखिए, सुनिए, सेव कीजिए, फॉलो कीजिए। दूर जाने की जरूरत नहीं। VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं। आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए जो ऐप स्टोर पर भी दस्तियाब है। VOA उर्दू अब आप